अरे जमा तो पीछे हुआ, उससे मैया और बाप पहले मिले। इसलिए एक प्रमाण क्या है, उसे गुरु जी ने पूछा था कि हमारी मैया कहती है, हाँ ऐसे ही आओ रास्ते पर, मैया की बात मानो। वेद शास्त्र जितने हैं हमारे प्राचीन जो आचार्य हैं भगवत तत्व हैं, इनको पिता माता के रूप में मानो, मैया है। इसलिए मैया के बात पर विश्वास करना होगा। हाँ ऐसी ही बात है, मैया झूठ भी बोल सकती है कभी कभी, किंतु शास्त्र कभी झूठ नहीं बोल सकते। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि भगवान है, भगवान जरूर है। इसलिए भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं। जब उन्होंने कहा जहां पर भी कोई भगवान का नाम लेता हो, एक भी नाम यदि लिया, यदि शुद्ध रूप में नाम नहीं हुआ तो कोई हानि नहीं, वो अपना फल देगा। जैसे कोई आदमी अनजान में एक छोटा सा बच्चा आग में हाथ देगा तो जलेगा कि नहीं हाथ, ये तो वस्तु का गुण है। पानी में कोई उतरेगा और हजार बार चेष्टा करे कि मैं भींगू नहीं, पानी में उतरेगा तो भीगेगा कि नहीं भीगेगा, अवश्य में भीगेगा, ये तो वस्तु का गुण है। उसी प्रकार से भगवान के नाम में जो शक्ति है, आप चाहे ज्ञान में करें अनजान में करें, किंतु उसका फल जरूर होगा। इस चीज को समझिए, हम उसको नहीं देखते हैं किंतु वो तो देखता है ना, उसकी कृपा हमारे ऊपर, हम तो उसी की संतान में है संतान। इसलिए भगवान का नाम करने का फल जैसे भी करो जरूर, किंतु हाँ जरा श्रद्धा से करेगा जल्दी उसका फल होगा, और यदि श्रद्धा के साथ नहीं करेगा थोड़ा सा विलंब होगा। यही नाम ही तुमको श्रद्धा ला देगा, वैष्णव से मिला देगा, गुरु से मिला देगा, और अंत में भगवत प्राप्ति करा देगा। इसलिए नाम में जरूर विश्वास रखना चाहिए। इसके बाद में उनकी बात सुन करके उनके दूत लोग संतुष्ट हो गए, और इधर में अजामिल को विष्णु के दूत जब जाने लगे, अजामिल उनसे बातचीत करना चाहा, उनके चरणों में गिरना चाहा, किंतु झट अंतर ध्यान होकर के चले गए। वो तो मर रहा था किंतु मृत्यु से बच गया, वो उठा। अरे हो, आज मैंने अजीब देखी, मैं तो मर गया था किंतु भगवान के दूतों ने हमारी रक्षा की। अब वो जो नारायण के दूत है, यदि मैंने बच्चे का नाम नारायण रखा और जैसे तैसे कहा, तो इसका तो ये फल हुआ कि मैं मृत्यु से बच गया और मैं इसी नाम को अब जाकर के करूंगा। इसलिए वहां से चला गया, हरिद्वार में गया, गंगा जी में स्नान किया और गंगा जी के किनारे एक पर्ण कुटी बनाई और वहीं पर प्रतिदिन 3 बार स्नान करता और नारायण नमो नारायण आय नमो नारायण आय करता। कुछ दिनों के बाद में वही चारों दूत उनके सामने आए सोने का विमान लेकर, बोले जी आप इसमें बैठिए। उन्होंने कहा मैं बैठूंगा तो पीछे, आप पहले बतलाइए, पहले मैं आपसे बातचीत करना चाहा, आपने बात नहीं किया, अब बातचीत कर रहे हैं। कहे उस समय तुम्हारे अंदर में जन्म मृत्यु से तो तुम मुक्त हो गया था, किंतु तुमको आत्म तत्व का भगवत तत्व का ज्ञान नहीं था। अब तुमको इतने दिन नाम करने से तुम्हारे अंदर में ये संसार क्या चीज है इसका ज्ञान हुआ, ये मरणशील ध्वंसशील वस्तु है, भगवान सबके प्रभु है, मैं उनका दास हूँ आत्मा हूँ, इसलिए तुम्हारा शरीर अब हट गया, शरीर पड़ा रहा, उसमें से आत्मा दिव्य निकली और वो दिव्यात्मा को शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि देकर के सुंदर रूप और सिंहासन पर बैठा कर, अब तुम पवित्र हो गया है। यह है अजामिल का शरीर। इसे हम लोगों को सुनना और समझना चाहिए, और आज ही से, कल से नहीं। आप लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोलिए
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
आज इसे आरम्भ करें, कल सवेरे से कुछ करो ना मत करो, पूजा हो न हो, कलयुग में पूजा से भी अधिक श्रेष्ठ यही है। इसलिए भगवान के नाम के साथ में पूजा यदि की जाए तो उसका बहुत फल होता है। इसलिए भगवान का नाम किसी स्थिति में सभी आदमी कर सकते हैं, स्नान करो न करो, पवित्र हो अपवित्र हो, एक पैसा कौड़ी लगता नहीं, चाहे मन लगे चाहे न लगे, मन को इसमें शांत करने की भी जरूरत नहीं। आप जोर से थोड़ा सा नाम करेंगे ना तो अपने आप कान भी वही सुनेगा, मन भी वहीं पर चला जाएगा, अपने आप केंद्रित हो सकते एकदम शांत हो जाएगा, और ध्यान लगाओ तरह तरह की चीजें मन में आएंगी, कभी भी शांति नहीं, अशांत चित्त रहेगा, वो उसको एक मुखी नहीं कर सकते हैं, समाधि नहीं लग सकती। एक आदमी समाधि में भी बैठा है किंतु हरे कृष्ण जरा जोर से बोलो बस उसकी समाधि खुल जाएगी। इसलिए नाम बलवान है, कलयुग केवल नाम। और भी हरे नाम हरे नाम हरे नाम ऐव केवलम कलौ नास्ते व नास्ते व नास्ते व गतिरं। हरे नाम एव हरि नाम ही हरि का नाम ही हरि का नाम ही केवल मात्र और केवल मात्र कलयुग के लिए गति है, ऐसा समझिए। इसलिए कोई कुछ करो तो ठीक है, ना करो तभी हरि नाम जरूर करो। कली से आप लोग आरंभ करते हैं, आप लोगों का जीवन सुखमय और शांतिमय हो। मैं कुछ नहीं चाहता आप लोगों से, मैं यही आप लोगों से भिक्षा चाहता हूँ कि आप लोग अपने कल्याण के लिए ही इस नाम को करें। कलयुग में इसको कहते हैं महामंत्र, मंत्र उसको कहते हैं जो मन से होता है। यदि उच्चारण हो गया तो उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। ओम नमो नारायण यदि जोर से करेंगे, गायत्री मंत्र यदि जोर से करेंगे वो नष्ट हो जाएगा। गायत्री मंत्र का उच्चारण मत करो, मन ही मन करो, किंतु ये मंत्र नहीं है, ये महामंत्र है। जोर से करो, धीरे करो, समाधि में करो, खूब उच्च स्वर से करो, ताल लय मान के साथ में, ढोलक मजीरा हारमोनियम किसी चीज के साथ में अकेले करो, ताली बजा के करो, दिन में करो, रात में करो, शाम को करो, जब इच्छा हो तभी कोई कर सकता है। स्त्री पुरुष हो, सामूहिक रूप में हो, अकेले हो, दुकेले हो, कोई भी कर सकता है। इतना ये शक्तिशाली, इसलिए नाम के प्रति भरोसा हो, नाम के प्रति में ऐसा ही विश्वास हो करके भगवान का नाम करें। और यदि प्याज लहसुन मांस मछली अखाद्य कुखाद्य छोड़कर सदाचार में लग करके और भगवान का नाम किया तो बहुत जल्दी से इसका फल हो जाए। एक सूखी लकड़ी है, एक गीली लकड़ी है। गीली लकड़ी वह है जब पानी में भीगी रहती है, आग देने से वो जलती नहीं है बहुत जल्दी, धीरे 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 जलते 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 पानी सुखा करके तब जलाएगी। इसी तरह से काम क्रोध इत्यादि के साथ में अभक्ष अभक्ष खाते हुए हरिनाम का करेंगे तभी अच्छा ही है, बुरा तो नहीं, किंतु वो भी गीली लकड़ी है। ये सबको दूर करके जब शुद्ध सत्व में प्रतिष्ठित होंगे तब जाकर के हरि का नाम प्रकाशित होगा, ऐसे नहीं। इसलिए हम लोगों को इसी प्रकार से विश्वास के साथ में भगवान का नाम लें। ये भागवत का श्रवण है, यदि ये कर लिया आज ही भागवत का श्रवण करना आप लोगों का हो गया। इसे आज यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। कल से कृष्ण की कथाओं को हम बोले, बहुत कथाएं हैं, मैं समझता हूँ कि एक वर्ष में भी ये हमारा भागवत नहीं शेष होगा, और एक ही अक्षर भी पूर्ण है, एक अक्षर भी भागवत का पूर्ण है। और ऐसे जिस हम धैर्य से कर रहे हैं ऐसे काफी समय लग जाएगा। कुछ आदमी 7 दिन में समाप्त करते हैं, उसमें वक्ता को भी कुछ नहीं मिलता, श्रोता को भी नहीं मिलता। हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग कहते हैं कि एक भी चीज हो अच्छी तरह से समझा बुझा करके श्रोताओं को प्रभाव पड़े और श्रोता लोग उसको ग्रहण कर सके, ये भागवत बात है। आज यहीं तक लो आरती करो।
बिंदाधरे खतमनागतमत्रिकाया यत्ते बधाई किम उदसुकसंगमेन।
अपने गुरु जी को प्रणाम कर रहे हैं, ये रघुनाथ दास प्रणाम कैसे कर रहे हैं। और उस मंदिर नाम की एक सती ब्रज में बहुत प्रसिद्ध है, ये बहुत प्रसिद्ध है, अपने पति के अतिरिक्त कहीं नहीं देखा। उसका पति आज 10-15 दिनों से कहीं बाहर गया है और इनके होटल पर हमने देखा कुछ, ये कहाँ से आ गए। फिर अपने मन में कहा, अरे शंका क्यों करते हैं, कोई हरा सुख पक्षी होगा। उसने सोचा कि ये एक फल होता है
बिंब फल,
बिंब फल का लोग से झट आकर के बैठ गया। अब लेकर के उसने देखा ठोकर मार करके, अरे ये तो बिंब फल नहीं, सब फिर उड़ गया। तो इसमें कौन सी बात है, ये इनका प्रणाम देखो, प्रणाम शब्द कहीं है, कितना ऊंचा भाव। जैसे फिर देखो, आलोल चंद्र लसत वन मल्य बंती रत्नांगतं प्रणय केलि
कलाविलासम्
कन्दमं त्रिभंग ललितं नियत प्रकाशम् हे प्रभु, आपका यह चित्र, आपका यह जो भाव है, लीला है हमारे हृदय में, मैं आपसे दंडवत प्रणाम करके कोटि कोटि बार आपसे ये प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना कर रहे हैं, क्या करें, आलोल चंद्रक हमने सुंदर है ना, लोल्यमान क्यों,
कृष्ण अभी इधर देखते हैं कभी उधर देखते हैं, किस लोग से? गोपियों के दर्शन के लोग से। हलो लसन रख लसत बन माल्य बंसी, फोटो पर बोली विराजमान बन माल्य बंसी माला, तो दुल्यमान हो रही है, एक जगह स्थिर नहीं है, नहीं तो दो दुल्यमान कैसे होगी? श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम, ऐसे कृष्ण को जो कि समस्त ईश्वरों से भी ईश्वर से भी ईश्वर हैं, मैं उनको इस लीला की। और वहाँ पर उनको देखो रूप मंजरी प्रतिता तुरेस्मिन पुंसा परस्य पदनम नहि पश्यति इति ने, रूप मंजरी कराचि सपाद पद्म
गोस्थेन्द्रनन्दन
भुजार्चितमस्तिकाया आमोदतः कनक गौरी पदारविन्दं संवाहनानि कनकैः तव किं करिष्ये, कनकैः तव किं करिष्ये, रूप मंजरी कराचि सपाद पद्म गोस्थेन्द्र नंदन भुजा अर्पित मस्तिकाया। विलास के बाद में श्रीमती राधिका जी अपने शरीर को कृष्ण की गोदी में दे रखा है, कृष्ण उनके उलझे हुए बालों केशों को सुलझा रहे हैं बड़े प्रेम। रूप मंजरी घर में बैठी है, उनके श्रीमती राधिका के चरण को संचर्चा बड़ी कोमल रूप से टहला रहे हैं। देखा रथी मंजरी को इशारे से बड़ा, यह है रघुनाथ दास रथी लाया, ला करके कहते हैं मैंने अभी सेवा कर रही है, किसको सेवा करो, मैं इस काम से जा रही हूँ, बस उनको चरणों की सेवा उनको दे दिया। और रूप मंजरी की पासी में एक पंखा था लेकर के, वही कह रहे हैं रूप मंजरी करात की तपाद पर, उन्होंने जिस चरणों की अर्चना की है सेवा की है अराधित पास, गोस्तेंद्र नंदन भुजार्पित मस्तिकाया, भुजा में अर्पित कृष्ण की जो मस्तिकाया जो मस्तक लेकर के बड़े आनंद के साथ में आंखों को बंद करके आनंद का स्वादन कर रहे हैं, किस चीज का स्वादन? मस्तिका का, जो कृष्ण से कहते हैं वही उसके आगे ही सब उनके मनोरथ पूर्ण कर रहे हैं मस्तिकाया। हाँ मुदत है हमारा ऐसा कौन सौभाग्य होगा, रूप मंजरी हमारे तरफ में लेकर के देंगे, अरे सखी इधर आ जा, ये सेवित मेरी जो चल रही है उसकी सेवा करो, और स्वयं एक पंखा लेकर ऐसा सौभाग्य होगा। अब दोनों मिलाओ, ब्रह्मा जी का प्रार्थना है इनको, कहाँ उनका है, यदि भी कुछ वर्णन कर रहे हैं इसका मतलब ये करोड़ जन्म में अभी पाएंगे कि नहीं पाएंगे, ये स्वभाव इसका सिर्फ और कितने हैं, सवैवास्मि सवैवास्मि न जिमामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे तन्मे माम चरणांबिके। कहाँ प्रणाम है राधा जी के, क्या क्या है उसमें, आपके बिना मैं जीत नहीं रह सकता, आप अपने चरणों की सेवा में मुझे लगा दें, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मर जाऊंगी, मैं नहीं बच सकता। कितनी विकलता के साथ में पड़ा, हम लोगों के अंदर में तो विकलता नहीं, कह हो रहे हैं विकलता का, उनके जो का अधिकार होना चाहिए तब तो उस रस में पहुंचेंगे, अभी कुछ जानते ही नहीं है कुछ, और उनकी हम सेवा में जाएंगे, हम पार किए भाव में हैं, ये सुन करके क्रोध होता था, सखी भाव कितना सर्वस्थान है, इन भावों को हम जब तक नहीं देखेंगे, उनकी सेवा नहीं होगी तब तो कहाँ से हम जाएंगे, इसलिए अपने नियम में छुप बन रहे हैं सखी, और क्या क्या बनने पड़ते हैं, हम लोग रूप गोस्वामी की रघुनाथ गोस्वामी की परिचारी होकर के हम उनके आनंद चले, इसके लिए लोभ होना चाहिए, इसे ये बड़ा अच्छा लगता है दीवाना होकर के प्रेम करना, इसलिए दीवाना होकर के दीवानी होकर के करना, ये तो काम भाव फल होकर सारी चीजें होकर करनी, कहाँ काम कहाँ क्या, ये सब दूर हो जाएगा, अभी तो तुम झट बिगड़ जाएगी, हम बिगड़ जाएंगे, कोई चीज़ हमारी इच्छा के विपरीत होगी, मैं बिगड़ जाऊँगा, क्रोधित हो जाऊँगा, जिससे प्रेम है उससे प्रेम सदा के लिए छूट सकता है, अभी कोई कारण हो जाए ना हो जाएगा, जीवन भर में बातचीत नहीं होगी, और वहाँ पर प्रेम के टूटने का की संभावना होने पर और बढ़ जाता है, वो कहते हैं कि आप कभी कम क्रोधित होकर के हमको ऐसा ऐसा मत कर और मैं इस सुधा का पान करूं। ये सब ये सब भाव है ये सब तो इसलिए मैं कहता हूं तो समझ आता नहीं है। हमने सब कुछ जान लिया इस समय अब कुछ बाकी नहीं था। हम लोग इतना आगे बढ़ते तो देखते हैं कि हमने इतना एक सुई की नोक पर भी हम लोगों ने प्रवेश नहीं किया। मैं तो काम रहता क्रोध रहता कोई अनर्थ रहता उस समय ने ये सब चीजें बम्बई मुझे आने की क्या जरूरत है वृंदावन को इसलिए अभी कुछ कमी नहीं। हाँ तुम सब जान गई है तुमको तो अब कुछ बाकी नहीं है जाना पूरी पंडित हो गई है क्या होगा। तुम किसी को प्यार करते हैं इधर देखो छोड़ दो सब जैसा है इधर देखो छोड़ दो सब। मैं कृष्ण को कृष्ण करें मैं राधा जी को या गोपियों को प्यार करता हूँ वो भी हमको प्यार करती हैं किंतु गोपियों को देखकर के कृष्ण को जो आनंद हो रहा है उससे गोपियों को कोटि गुण आनंद होता है कृष्ण को दर्शन करने में। आ रहा है समझ में। कृष्ण अपने भक्तों को देखते हैं और भक्त कृष्ण को देखते हैं किंतु कृष्ण को जो आनंद होता है भक्तों को दर्शन करने में राधा जी का दर्शन करने में उससे कोटि गुण सुख होता है राधा जी को या भक्तों को कृष्ण को दर्शन करने में। क्यों? प्रेम के दो पहलू हैं। एक है प्रेम का विषय बहुत गंभीर विषय है थोड़ा सा इधर उधर सावधान नहीं होंगे तो नहीं समझ सकेंगे। प्रेम के दो पहलू हैं एक प्रेम का विषय होता है और एक प्रेम का आशय होता है। कृष्ण समस्त प्रेमों के विषय हैं और उनके दास लोग उनके सखा लोग उनके माता पिता और उनकी प्रेयसियां जो हैं प्रियाएं ये सब प्रेम के आश्रय हैं। कह तो दिया किंतु समझना जरा जब तक कुछ अधिक नहीं सुनेंगे नहीं समझ। यही भाव है भागवत का इसलिए सब लोग भागवत को नहीं समझ पाते। भागवत है प्रेम है पोथी नहीं प्रेम है कृष्ण के प्रति। उसमें कृष्ण जी ने मथुरा से उद्धव जी को भेजा था जाओ वहां पर प्रेम की पाठशाला में कुछ पढ़ करके आओ सब हमारी बातों को समझ सकेगा। इसलिए गोपियों के पास में उद्धव जी को भेजा ऊपर से कहा कि उनको सांत्वना दे आना। अब भीतर से मामला क्या था उद्धव मेरी बात नहीं समझ सकता हमारी भावों को नहीं समझ सकता है इसलिए जिस पाठशाला में मैंने पढ़ करके छात्र बन करके गुरु करके और छात्र बन करके प्रेम का पाठ सीखा है अढ़ाई अक्षर का प्रेम उसी में ये भर्ती हो और भर्ती होने के बाद वहाँ पर पढ़े और पढ़ करके तब हमारा गुरु भाई बने और तब मेरी बात को समझेगा कि नहीं समझ सकता है इसलिए उद्धव जी को भेजा किसी को बतलाया नहीं। और उद्धव जी वो गए उस समय समझ रहे थे हमारे जैसा पंडित हमारे जैसा विद्वान और हमारे जैसा कृष्ण का भक्त कोई नहीं है जगत ऐसा समझ हमसे श्रेष्ठ कोई कृष्ण का भक्त प्रिय ही नहीं है क्योंकि कृष्ण भी उनको कहते हैं कि तू हमारा हृदय है मैं तुम्हारा हृदय हूँ। इसलिए उद्धव का ऐसा था ये मेरे से श्रेष्ठ भक्त किंतु वहाँ पर जब गए तो उन्होंने देखा कि इस पाठशाला में मैं भर्ती होने योग्य ही नहीं क्वालिफिकेशन नहीं है उनका स्टैंडर्ड नहीं है कि उसकी प्रेम की पाठशाला में भर्ती हो सके बहुत नीचे का स्टैंडर्ड। गोपियों ने उनको अपने स्कूल में भर्ती नहीं किया। प्रिंसिपल कौन है प्रेम की राधा जी ललिता विशाखा इत्यादि ये सब बड़े बड़े शिक्षक आठ हैं उसके अंदर में हजारों लाखों शिक्षक हैं। उद्धव जी देखा जो मैं तो छात्र हूँ नहीं जाए लोग जो बोले लेकिन स्टैंडर्ड चाहिए स्टैंडर्ड हमें नहीं
उन्होंने देखा जैसे कोई व्यक्ति चला जाए हिमालय में 29,130 फीट एवरेस्ट है सुनते हैं, और भी कुछ पहाड़ियां ऐसी हैं जो एवरेस्ट से भी ऊंची हैं, उनका चढ़ना भी बड़ा दुर्गम है, वो इससे भी बहुत ऊंची हैं। वहां पर एक आदमी जाए और गांधी कैप लगा ले टोपी और देखे ऐसा ऊंचा ना, तो ऐसे देखते देखते ऐसे हो जाने से टोपी गिर जाएगी, कितना बड़ा ऊंचा और हम कितने बड़े हैं 3.5 हाथ के। वहां पर अपनी ऊंचाई मालूम पड़ती है कि हमारी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई में कितना अंतर है। उन्होंने गोपियों के प्रेम को देखा हिमालय से भी ऊंचा, हिमालय का तो आदि अंत है, उसका आदि अंत नहीं उस प्रेम का जो कितना ऊंचा है। निकट में जाए गए तो देखा उनका सिर नतमस्तक हो गया, उन्होंने उनकी वंदना की, आशा महो चरण रेण जुसाम हम श्याम वृंदावने किमत कुल मल्लतौषधीना जह दुस्तजन स्वजन आर्य पथं च हित्वा भेजे मुकुंद पद्मं सुतभेष्टमेज्ञा। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज जी को कह रहे हैं जब देखा और छोर नहीं, कितना अथाह प्रेम है उनका, हमारा तो एक बिंदु मात्र प्रेम नहीं कृष्ण के चरणों में। उस समुद्र में ये डूब गए तो फिर ऊपर आने का कोई नाम निशाना नहीं रह गया, इसलिए उन्होंने कहा मैं गोपियों की चरण रेणु के लिए पाने के लिए, चरण की धूली पाने के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, यदि हमारा कोटि कोटि जन्मों का सौभाग्य हुआ तो गोपियों की एक चरण की धूली की मैं वंदना करने योग्य नहीं। इसलिए जो ब्रह्मचारी के लिए जिनके चरण कमलों का ध्यान करना भी बड़ा मुश्किल है, ध्यान में भी नहीं आता कृष्ण के चरणों को, ध्यान नहीं कर सकते, अभी ध्यान कीजिए आएगा नहीं। बड़े बड़े योगी लोग इंद्र की बात तो क्या, शंकर जी, ब्रह्मा जी और लोग सब ऋषि मुनि लोग उनके चरणों कमलों का ध्यान करते हैं, वो नहीं आता। और गोपियां कृष्ण को भूल जाने की चेष्टा करती हैं, कहती हैं कि भूल जाना अच्छा है, किंतु भूल नहीं पाती। इन गोपियों की चरण धूली पाने के लिए यदि मैं वृंदावन में कहीं गुल्म और लता के रूप में भी जन्म ले लिया, गुल्म और लता घास जो है दूब की घास जमीन पर कुछ उससे बड़े बड़े होते हैं, वो सूख जाते हैं, फल आया सूख जाते हैं, उसे जड़ी बूटियां भी बनती हैं, तो कुछ बड़े बड़े भी होते हैं। यहाँ पर छोटी घास के लिए कह रहे हैं, इसलिए गोपियां जब कृष्ण से मिलने के लिए जाती हैं तो अनुग्रह करके इधर से यदि आ जाएं तो उनकी चरणों की धूली यदि हमारे सिर पर लग जाए हमारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, प्रभु हमको ऐसा ही जन्म देना अगली बार, उद्धव होकर के मैं नहीं आना चाहता, मैं तो वृंदावन में कहीं भी एक घास हो जाना चाहता, पेड़ बन जाओ, पेड़ होकर के क्या करूंगा, उस पर तो गोपियों की चरण धूली ऊपर जाएगी नहीं, सहज रूप में गोपियां जा रही हैं और उन्होंने चरण रख दिया और उनकी धूली लग जाए मेरे साथ, नहीं नहीं इतनी स्पर्धा नहीं करूंगा। स्पर्धा मैंने क्या, जो चीज नहीं मिलने की होती है उसको यदि मिलने की संभावना हम कर ले मन में, मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं, लोग सुन करके हंसेंगे, कोई संभावना है नहीं है। इसी तरह से उद्धव कहेंगे ओहो मेरे लिए ये सौभाग्य होना बड़ा कठिन है, ये हो नहीं सकता, तब उन्होंने हाथ जोड़ करके वंदना की, पुनः वंदे नंद प्रजयस्त्रीण पादुरेणुम अवेक्षणश जातं हरे कथोद्गीत भुआ भुआति भुवनत्रयम्। और ये गोपियों, ये जो गोपियां हैं इनकी चरण धूलि में से कोई एक की एक चरण धूलि, एक धूलि कण बहुत छोटी होती है, एक धूलि कण ये निकाल लेना बड़ा भारी कठिन है, मैं किंतु कहते हैं कि आज उसी की मैं वंदना कर रहा हूं। एक चरण धूलि होगी तो किसी के एक चरण की तो होगी ना, और एक चरण में ये किसका चरण की धूलि मांग रहे होंगे, विचार कीजिए, जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे गोपियों में श्रेष्ठ कौन है, राधा जी, इसलिए राधा जी के चरण की एक धूलि की वंदना कर रहे हैं, दूर से कर रहा हूं, ये हमारा सौभाग्य नहीं कि उनके चरण की धूलि हमारे सिर पर आ जाए, मैं घाट होने पर भी आने की संभावना, इतनी बड़ी चीज है ब्रह्मा और शंकर के लिए, तो हम लोगों के लिए तो बात क्या। उद्धव और नारद जी के लिए भी ये भागवत का संदेश है। इसलिए मैं बहुत दूर से प्रणाम करता हूँ जिन गोपियों के मुख से निकली हुई जो भगवान की जो लीला कथाएं हैं और उनका जो गुण और जस है, विश्व ब्रह्मांड को एकदम पवित्र बना देता है। कृष्ण के साथ में गोपियों का जो लीला चरित्र है यह विश्व ब्रह्मांड को एकदम पवित्र कर देगा, ऐसी ये कथा है। कृष्ण ने देखा जब उद्धव जी आए और बोले गोपिया का कुछ संदेश लाए, मैं तो हैरान हूं मैं उनका संदेश क्या लाऊं, मेरी समझ भी नहीं आया। मैंने गोपियों से कहा देवियों मैं वहां से आया तो मैंने कहा कि आपके विरह में कृष्ण बड़े तड़प रहे हैं, उनकी बड़ी विचित्र दशा है। दो बार कहा, तीन बार कहा, चार बार कहा, पर एक गोपी कहती है अब ऐसा मत कहना, आप पूछते हो कि हम जाकर के वहां पर तुम्हारा संदेश क्या कहें, तो तू ये मत कहना जैसे गोपियां कृष्ण के विरह में बड़ी दुखी हैं और मर रही हैं, गोकुल के बछड़े मर गए, गायें भी मर रही हैं, पेड़ सूखने लगे, कोयल कुहकती नहीं, मोर नाचते नहीं, सखा लोग अब खाते पीते नहीं, गोचारण को जाते नहीं, जसोदा मैया सू करके काटा हो गई हैं, किसी में प्राण का संचार है कि नहीं ये मैं कह नहीं सकता। ऐसा कहूं? गोपी ने खबरदार कृष्ण से मत कहना, ये कहना ये सुन करके वो बड़े दुखी हो जाएंगे और उनका प्राण नहीं रहेगा, वो तो मक्खन से भी कोमल है। तुमने हमसे कहा कृष्ण हमारे विरह में बड़े दुखी हैं, तो हम लोग मरे नहीं, किंतु कृष्ण ने ये सुन लिया कि गोपियां हमारे विरह में दुखी हैं, तो वो रह नहीं सकते, तत्क्षणात प्राणों को छोड़ देंगे, बड़े कोमल हैं। मक्खन होता है ना हाथ में लेने से ही पिघल जाता है, कृष्ण उसे भी कोमल है, उनका मन इतना भी कोमल है। मत कहना, उनसे कहना गोपियां बड़ी सुखी हैं, खाती पीती मस्त हैं, आपको याद नहीं करती हैं, ऐसे कहना। और ये मत कहना कि गोपी दुखी है, यदि कहना तो धीरे धीरे कहना, एक कपड़ा है ना पुराना पानी में भीग गया, उसको पानी निचोड़ना है तो जोर से मत निचोड़ो नहीं तो फट जाएगा। कृष्ण का कोमल हृदय है, यदि थोड़ा सा कुछ जोर से कह दिया तो ऐंठने के समान उनका हृदय फट जाएगा, इसलिए धीरे धीरे बतलाना, एक दिन में मत बतलाना, महीनों में वर्षों में हमारी स्थिति को बतलाना। पहले तो यही कहना जो बड़ी सुखी हैं, आपको भूल चुकी हैं, कोई चिंता नहीं करती हैं, खाती पीती हैं, मस्त करती हैं, श्रृंगार करती हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण यदि हमको भूल गए तो हम भी उनको भूल जाएंगे, इसमें क्या है। कृष्ण ने सुन करके कहा, उद्धव जी जब आए तो उन्होंने कहा उनसे, वह गोपियों को हमारे प्रति कितना प्रेम है, राधा या प्रणय महिमा की दृशा, राधा जी का हमारे प्रति जो प्रणय है यह कैसा है, साधारण आदमी चीज को कल्पना नहीं कर सकता। एक बीज है भक्ति का, वो बीज क्या है, महाप्रभु जी कहते हैं यदि कोई साधु संत आकर के हमारे हृदय में इस चीज को बतला करके हमारे हृदय में भावना करा दे, कृष्ण की सेवा कैसे होती है, मैं कृष्ण की सेवा करूंगा, ये जो भावना जीव के हृदय में दे देना यही भक्ति लता का बीज है। क्या बतलाया, मैं कृष्ण की सेवा, तुम कृष्ण की सेवा करना, इसी से तुम्हारा संसार सुखमय हो जाएगा, भव सागर को पा करके कृष्ण के चरणों को पा करके अनंत काल के लिए सुखी और शांति तुम हो जाएगा, जीवन तुम्हारा कृतार्थ और पूर्ण हो जाएगा, ये संसार के किसी भी चीज से नहीं होगी। कोटि कोटि बार हम लोग जन्म लिया मरे हैं, स्त्री का कभी, पुरुष का कभी, कभी देवता हुए, कभी सुअर कुकर गधे हुए, कभी कुछ हुए, कभी राजा हुए, कभी प्रजा हुए, ऐसे ही हम घूम रहे हैं, कभी भी हमें सुख शांति नहीं मिली, इस मनुष्य जन्म में हम आए हैं, यदि इसको गंवा दिया तो हमारा जन्म बेकार का चला जाए। इसलिए संसार के सुखों में मत, विषयों में मत भूलो। तो कृष्ण की सेवा करने से, उनका नाम करने से, कथाओं को सुनने से ये भावना आती है कि हम भी कृष्ण की सेवा करें, गुरु दीक्षा के माध्यम से इसी चीज को देता है शिष्य के हृदय में, और ऐसा देता है कि जीवन जन्मांतर में कोटि कोटि जन्म में इस चीज को नहीं भूल सकता कि कृष्ण ही हमारे आराध्य हैं, मैं उनका सेवक हूँ, मैं उनकी सेवा करूँ। यहीं से आरंभ हुआ। इसका पहला स्टेज है श्रद्धा, इसे कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा माने क्या? खंड खंड हमारे शरीर का हो जाने पर भी विश्व ब्रह्मांड हमारा यदि उल्टा हो जाए, विरोधी हो जाए, तभी कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ूंगा और नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, इस दृढ़ विश्वास का नाम श्रद्धा। अब इसी को बतलाइए, ये कितने के लोगों के हृदय में ऐसी श्रद्धा होगी? यदि 10 रुपए का भी कहीं अंतर पड़ता है तो कहीं छोड़ दो, कृष्ण भक्ति कोई जरूरत नहीं। कभी कभी पति कुछ आगे बढ़ गए कि मैं भजन करूंगा, और गले में माला लेकर के जब ही घर में पहुंचे, श्रीमती जी बड़ी बिगड़ गई है, तुम अब क्या साधु होगा, घर बर्बाद करेगा, जल्दी उतारो, और अपने हाथ से निकाल दिया। वो देखते रह गए, जाओ खबरदार मत जाना अब उनके यहाँ, और यहाँ जो पाठ होता है प्रवचन रात में 8 बजे से 9 बजे, इसमें कभी मत जाना, ये बर्बाद कर देंगे, और जाएगा जब भी तो मैं घर से चली पीहर को, और इस पर भी यदि नहीं मानेगा तो मैं बीज खा करके मर जाऊंगा। कहा भाई देवी जी आपको प्रणाम है, मैं नहीं जाऊंगा।